एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मसीह तो हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। Do दिखता नहीं किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीह तू हमको बचा ले।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजोर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन के साथ आपके पास आता हूँ। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे जब हम उसके वचनों से सुनते हैं। आइए हम उसके वचनों को सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो आशीष दे, हमारे मनों को खोल दे और तेरा वचन को समझने के लिए मदद कर और उसे आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के साथ तेरे वचनों को तेरे लोगों को पेश कर सकूं और तेरे लोग जो सुन रहे पिता उन्हें तो सुनने के लिए और समझने के लिए मदद कर ताकि वे तेरा बहुतायत से आशीष पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा संवाद का शीर्षक है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह अपने चेलों के संग इस संसार में 3.5 साल समय व्यतीत किए, बहुत नज़दीकी से उनके साथ जीवन व्यतीत किए और उन्हें सिखाया और उनका स्वर्ग जाने का समय निकट आ गया था और उन लोगों को वह अंतिम संदेश देना चाहता था और सांत्वना देना चाहता था। अपने शिष्यों की ओर ईश्वरीय प्रेम और कोमल सहानुभूति के साथ देखते हुए मसीह ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। यहूदा उपरोटी कोठरी से जा चुका था और मसीह बाकी 11 के साथ अकेला रह गया था। वह उनसे अलग हो जाने वाले समय को निकट आते देखकर कुछ कहने वाला था, परंतु ऐसा कहने से पहले उसने अपने महान उद्देश्य के पूरा होने के विषय में संकेत किया। इसी बात का उसने अपने सामने सदा लक्ष्य रखा था। इस बात की उसे खुशी थी कि उसके तमाम कष्ट और अपमान सहने से पिता के नाम की महिमा होगी, और इसकी ओर उसने सबसे पहले अपने चेलों के ध्यान को खींचा था। जीवन के अंत समय के उपदेश की तरह उसने चेलों को संबोधित करते हुए कहा, हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि मैं जाता हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। यह सुनकर चेलों को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उन पर भय छा गया। वे मुक्तिदाता के और नजदीक आए, उसके और पास आए। उनका गुरु और प्रभु, उनका प्रिय शिक्षक और मित्र उन्हें अपनी जान से भी प्यारा था। उन्होंने अपनी सभी कठिनाइयों के समय दुख और निराशा में सहायता के लिए उसी की ओर निहारा था, और अब वह उन्हें बिना किसी सहारे के अकेले छोड़कर जाने वाला था। उनका हृदय किसी अनिष्ट घटना की शंका से भर गया था, परंतु मुक्तिदाता के मधुर वचन उनके लिए आशा से परिपूर्ण लगे थे। वह जानता था कि दुश्मनों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाएगा, और जो कठिनाइयों से घबरा जाते हैं उन पर शैतान बड़ी आसानी से अपना कब्जा कर लेता है। इसलिए उसने उन्हें सावधान कर दिया, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:18। इस पृथ्वी की बातों से उनका ध्यान हटाकर स्वर्गीय बातों की ओर लगाया। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तुम्हारी खातिर मैं इस संसार में आया था, और तुम्हारी ओर से मैं यह काम कर रहा हूँ। जब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा वहां भी तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। मैं इस पृथ्वी पर अपने आप को तुम पर जाहिर करने के लिए आया था, ताकि तुम विश्वास कर सको। मैं पिता के पास इसलिए जाता हूँ ताकि तुम्हारी ओर से उसकी मदद करूँ। मसीह के जाने का उद्देश्य, चेले जिस बात से डर रहे थे बिल्कुल उसका उल्टा था। इसका यह अर्थ नहीं था कि वह हमेशा के लिए उनसे अलग हो रहा था, वह तो उनके लिए जगह तैयार करने जा रहा था, ताकि वह फिर आए और उन्हें अपने साथ ले जाए। जब उनके लिए वह घर बना रहा होगा, उस समय उन्हें ईश्वरीय आदर्श पर अपने चरित्र को ढालना होगा। चेले फिर भी परेशान थे। थोमा तो सदा ही संदेह करने से परेशान रहता था। उसने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। स्वर्ग को जाने के लिए अनेकों मार्ग नहीं हैं, हर कोई अपनी इच्छा अनुसार नहीं चुन सकता है। मसीह कहता है, मैं ही मार्ग सच्चाई और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब सुसमाचार का पहला उपदेश प्रचार किया गया था, जब अदन की बारी में यह घोषित किया गया था कि स्त्री की संतान सांप के सिर को कुचल डालेगा, मसीह को सम्मानित किया गया कि वह मार्ग और सच्चाई और जीवन बने। जब आदम इस धरती पर था तब भी वह मार्ग था। जब हाबिल ने वध किए हुए मेमने का खून परमेश्वर को भेंट किया, तो वह लहू उद्धारकर्ता के लहू को प्रकट कर रहा था। मसीह ही वह मार्ग था जिसके द्वारा हमारे पूर्वज और भविष्यवक्ता बचाए गए थे। केवल वही एक मार्ग है जिससे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। मसीह ने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अभी भी चेलों की समझ में कुछ नहीं आया था। फिलिपुस एक चेला पूछ बैठता है, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उसके सोचने समझने की शक्ति की कमी को देखकर मसीह ने अफसोस भरे लहजे से पूछा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या यह संभव है कि जो काम पिता मेरे द्वारा करता है वह तूने ना देखा हो? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता की गवाही देने के लिए ही आया हूँ? तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मसीह जब इंसान बना था तो उसकी ईश्वरीय शक्ति समाप्त नहीं हो गई थी। यद्यपि उसने मनुष्य रूप में अपने आप को दीन कर लिया था, परंतु उसकी ईश्वरीयता अपने स्थान पर स्थिर रही। केवल मसीह ही इस जगत और मनुष्यों के सामने पिता का प्रतिनिधित्व कर सकता था, और इस प्रतिनिधि को देखने और सुनने के लिए 3 वर्ष से भी अधिक का अवसर चेलों को मिला था। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। जिन कामों को मसीह कर रहा था, जिन कामों को आज तक किसी मनुष्य ने ना तो किया था और ना ही कर सकता था, उन्हीं को देखकर उनके विश्वास को मजबूत हो जाना चाहिए था। मसीह के कामों ने उसकी ईश्वरीयता को प्रमाणित कर दिया था, उसमें होकर पिता को दिखाया गया था। यदि चेलों ने पिता और पुत्र के इस महत्वपूर्ण रिश्ते पर विश्वास कर लिया होता तो उनका विश्वास उस समय नहीं डगमगाता जब संसार को विनाश होने से बचाने के लिए मसीह दुख उठा रहा था और क्रूस पर बलिदान हो गया था। वास्तव में मसीह चाह रहा था कि उन्हें उस नीचे स्तर वाले विश्वास से ऊपर उठाकर एक ऐसे अनुभव से पार कराए कि वे सचमुच में जान ले कि इंसान के शरीर में वह परमेश्वर था। उसकी इच्छा थी कि उनकी विश्वास उन्हें परमेश्वर की ओर ले जाए और वहीं पर स्थिर हो जाए। हमारा उद्धारकर्ता कितने प्रेम दया और कृपा के साथ चेलों को तैयार कर रहा था कि वे परीक्षा के आने वाले तूफान से अपने आप को बचा सके। अपने साथ उन्हें भी परमेश्वर में छिपा देना चाह रहा था। जब मसीह इन वचनों को कह रहा था तो उसके चेहरे से परमेश्वर के महिमा की ज्योति चमक रही थी। जितने भी ध्यान से उसे सुन रहे थे उन्होंने पवित्र भय का अनुभव किया। उनके हृदय पक्के संकल्प के साथ उसकी ओर खींचने लगे, और जब अधिक प्रेम के साथ वे मसीह की ओर खींचे तो आपस में एक दूसरे की ओर भी आकर्षित होते गए। उन्होंने अनुभव किया कि स्वर्ग उनके बीच में ही है, और जिन वचनों को वे सुन रहे थे वे उनके स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए संदेश है। मसीह ने आगे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। मुक्तिदाता बहुत ही निश्चिंत था कि उसके चेले शीघ्र ही इस बात को समझ लें कि क्यों उसने अपनी ईश्वरीयता को मनुष्यता में मिला दिया था। उसका उद्देश्य क्या था? वह इस जगत में परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए आया था, ताकि मनुष्य उसकी फिर से बहाल करने वाली शक्ति से ऊपर उठाया जा सके। परमेश्वर मसीह में प्रकट किया गया ताकि मसीह उसमें प्रकट किया जा सके। यीशु ने अपनी किसी ऐसी योग्यता को जाहिर नहीं किया और ना ही किसी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जो मनुष्य विश्वास द्वारा उसमें होकर ना प्राप्त कर सकता हो। उसकी संपूर्ण मनुष्यता ऐसी थी जिसे उसका प्रत्येक अनुयायी हासिल कर सकता है, यदि वह भी उसी की तरह संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित हो जाए। परन इनसे भी बड़े काम करेगा, मसीह ने कहा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं था कि चेलों के काम मसीह के चरित्र से भी बढ़कर होंगे, बल्कि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। वह केवल चमत्कार के कार्यों के विषय में नहीं कह रहा था, परंतु उन सभी कामों के विषय में कह रहा था जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में संसार भर में किया जाएगा। प्रभु के स्वर्ग चले जाने के बाद चेलों ने महसूस किया कि मसीह के वायदे किस तरह से पूरे हो रहे हैं। मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, तीसरे दिन भी वह जी उठा, तीसरे दिन उसका जी उठना और फिर स्वर्ग को चले जाना चेलों के लिए एक जीवित वास्तविकता थी। उन्होंने धर्मशास्त्र में खोजबीन किया और एक ऐसे विश्वास और दृढ़ निश्चयता के साथ उसकी शिक्षाओं को कबूल किया जैसा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका ईश्वरीय शिक्षक अपने विषय में जो कुछ दावा करता था वह सच में वही था। जब वे लोग अपने अनुभवों और परमेश्वर के प्रेम के विषय में लोगों को बताते थे तो लोगों के हृदय पिघल जाते थे, वशीभूत हो जाते थे और भीड़ की भीड़ यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते थे। उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों के साथ जो वायदा किया था वह वायदा उसकी कलीसिया के लिए भी अंत समय तक के लिए है। परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं थी कि उसके अद्भुत उद्धार को पाए हुए लोग केवल निरर्थक परिणामों को हासिल करें। उसके सभी सेवक जो उसका काम करने के लिए निकलेंगे वे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर उनके लिए और उनके द्वारा क्या कुछ कर सकता है इस बात को पूर्ण रूप से वे अनुभव करेंगे और उसके वायदों पर पूर्ण विश्वास रखेंगे। वह कहता है, वरन इससे भी बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जैसा कि अभी भी शिष्य लोग मुक्तिदाता के असीमित सामर्थ्य और साधनों से अनजान थे, उसने उनसे कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यूहन्ना 16:24। उसने समझाया कि उनकी सफलता का भेद यह होगा कि वे उसके नाम से सामर्थ और अनुग्रह मांगे। वह पिता के सामने हाजिर रहेगा ताकि उनके लिए उससे विनती करे। एक विनम्र विश्वासी की प्रार्थना को मसीह उसकी ओर से अपनी इच्छा बताकर प्रस्तुत करता है। हर एक निष्कपट प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। हो सकता है कि वह सुंदर और मनमोहक शब्दों में ना कही गई हो, परंतु यदि वह हृदय की गहराई से निकलती हुई है तो वह उस मंदिर तक अवश्य पहुंचेगी जहां पर यीशु सेवकाई का कार्य कर रहा है और वह उसे शुद्ध रूप से बिना किसी हिचकिचाहट या तुतलाहट के अपनी पूर्णता को उसमें मिलाकर खुशबूदार इत्र की तरह पिता के सामने पेश करेगा। निष्कपटता और आत्मसम्मान का मार्ग बिना बाधा के नहीं हो सकता है, परंतु हर एक रुकावट के समय हमें प्रार्थना करना चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे परमेश्वर से सामर्थ नहीं मिली हुई हो और इस सामर्थ का स्रोत जहाँ से यह आती है हर एक कमजोर से कमजोर इंसान के लिए खुला हुआ है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मसीह ने अपने चेलों से आग्रह किया कि मेरे नाम से प्रार्थना किया करो। उसके अनुयायियों को परमेश्वर के सामने मसीह के नाम से खड़ा होना है। उनके लिए जो अनमोल बलिदान दिया गया है उसके द्वारा यहोवा की दृष्टि में वे भी वैसे ही मूल्यवान हैं, क्योंकि मसीह की धार्मिकता उनमें प्रवेश कर गई है, इसलिए उनकी गिनती बहुत मूल्यवानों के साथ की गई है। मसीह की खातिर परमेश्वर यहोवा उन लोगों को क्षमा प्रदान कर देता है जो उससे डरते हैं। वह उनमें पापी होने की दुष्टता को नहीं देखता है बल्कि उनमें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की समानता को देखता है जिसमें उनका अटूट विश्वास है। हमारा प्रभु बहुत ही निराश हो जाता है जब उसके लोग अपने आप को तुच्छ तर्क का होने का अनुमान लगाते हैं। वह चाहता है कि उसकी चुनी हुई विरासत के लोग अपनी मूल्य उसी हिसाब से समझे जिस मूल्य को देकर उन्हें बचाया गया है। परमेश्वर उन्हें चाहता था तभी तो उसने उन्हें छुड़ाने के लिए इतना महान मूल्य अपने प्रिय पुत्र को भेजा था। वह उनको प्रयोग करना चाहता है और वह अत्यंत प्रसन्न होता है जब वे लोग उसे बड़ी से बड़ी मांग करते हैं, ताकि वे मसीह के नाम की महिमा प्रकट करें। यदि वे उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज की मांग कर सकते हैं। परंतु मसीह के नाम से प्रार्थना करना बहुत बड़ा अर्थ रखता है। इसका अर्थ यह होता है कि हम उसके चरित्र को ग्रहण कर रहे हैं, उसके स्वभाव को दूसरों पर प्रकट करेंगे और उसी के कामों जैसा काम भी करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रतिज्ञा किया था कि उनको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, वह उनका सहायक के रूप में ठहरेगा। यीशु मसीह उन्हें वादा किया था कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, और यीशु मसीह अपना वादा पूरा किया। पवित्र आत्मा उनके लिए भेजा गया और पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके कामों में मदद किया और उनको सच्चाई का रास्ता में चलाया। और वही पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। आज हम प्रार्थना करके यीशु मसीह से हम मांग सकते हैं, हम जो उसके अनुयायी हैं, हम जो उसके विश्वासी हैं, आज हम मसीह रास्ता में चल रहे हैं। यीशु मसीह हमें आशीष देने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और अपना पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। आइए हम उसके पास आते हैं और उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ उसे मांगे, प्रार्थना में मांगे, और वह हमें सब कुछ देंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने कितना अच्छा वादा अपने चेलों को दिया कि उन्हें अकेले नहीं छोड़ेगा, उन्हें अपना पवित्र आत्मा का साथ दिया और उन्हें तेरा महिमा के लिए जीने के लिए शक्ति सामर्थ दिया। वही रास्ता में हम चलने चाहते हैं पिता। हमें भी तू तेरा सच्चाई का मार्ग दिखा, हमें भी तेरा सामर्थ दे। मेरे हर एक श्रोताओं को तू आशीष दे, सबों को तेरा नाम ले चला, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना करें।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudevent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।